आज के लेसन में कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समझने की, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से मुताबिक। हमने पिछली आयत में पढ़ा था, आयत नंबर 101 में, कि रसूल उनके पास आए लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या किया। उन्होंने उनमें से एक फरीक ने अल्लाह की किताब को पीछे फेंक दिया। पीछे फेंकना एक बात बताई गई, सिंबल ये मतलब नहीं कि उठा के पीछे फेंक दिया फिजिकली, ये उनका जो बिहेवियर था ना उसको डिपिक्ट किया गया कि उनका बिहेवियर क्या था। ये उन्होंने इग्नोर कर दिया उसको, बिल्कुल उसको तवज्जो नहीं दी, जैसे कि हमारा भी आजकल यही हाल है। तो इसी तरह उन्होंने किया था। लेकिन जब भी कोई उम्मत, चोजन उम्मत, अल्लाह के कलाम के साथ ऐसा करेगी ना, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई चीज तो जाहिर है उसकी जगह लेगी। अल्लाह के कलाम को छोड़ा तो उसके बाद कोई और चीजों में पड़ जाएंगे, किसी खुराफात में, और यही हुआ उनके साथ। और आप देखेंगे कि आज भी यही हो रहा है, जब अल्लाह की किताब को छोड़ दिया गया तो उसके सब्स्टिट्यूट क्या बना, वो यही चीजें हैं। तो देखते हैं आयत नंबर 102 से, अब आपको रब समझ आया कि पिछली आयत के साथ इस आयत का कनेक्शन है। पूरे कुरान में आयात का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, इरेलीवेंट नहीं है कि एक बात है फिर एकदम ही कोई और बात, उसका जरूर कुछ ना कुछ पीछे से ताल्लुक होता है। तो हमने समझ लिया कि जब उनका रवैया किताब के साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ फिर, जब उन्होंने किताब के साथ ये सलूक किया ना, तो फिर किस डिच में वो गिर गए, किस गड़े में गिर गए, देखते हैं। वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और पैरवी करने लगे, इत्तेबा करने लगे, फॉलो करने लगे, वो किस चीज को, उसको जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाहत में, उनके रूल में। एक तो ये माना है किया, और दूसरा भी एक और माना भी मुफस्सिरीन ने किया है, वो ये किया है कि तत्लू से मतलब यहाँ पे के पढ़ते थे शयातीन अला मुल्के सुलेमान, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर इफ्तरा बांध के, ये समझ के पढ़ते थे कि इस इल्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हुई, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इतना इकतदार मिला, वो उड़ते फिरते थे, हवाएं उनकी जो है ये मुसख्खर कर दी गई थी, जिन्नात उनके हाथ में, उनके काबू में थे, परिंदों की बोलियां वो बोलते थे, इतनी बड़ी बादशाह ये कैसे उनको मिल गई। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस तरह से मिली है कि वो भी जादूगर थे, अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो भी जादू के जोर से उन्होंने ये सब किया। ये बात, इसका पीछे क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जादू का चर्चा बहुत चल गया। जिन्नात शयातीन जो है आसमान से बातें लाते थे और अपने साथ झूठ सच मिला के, और फिर काहिनों को बताते थे, काहिन लोगों को बताते थे। तो उनके उन बनी इसराइल की ना दिलचस्पी बहुत ज्यादा इन चीजों में हो गई थी। ये सब देख के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी सब किताबों को जमा किया जिनमें ये जादू टूने कहानत और ये बातें थी, और इनको एक संदूक में रख के अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, और हुक्म दिया कि खबरदार आज के बाद में ये बात किसी से ना सुनूं कि जिन इल्म गैब जानते हैं। जैसे आज हमारे भी दिमागों में पता नहीं जिन्नात से जाके पूछा जाए तो वो उनको गैब की बातें बताए, और अगर मैंने कभी किसी से ये बात सुनी तो उसको उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो जो खजाना, ये जो चीजें बुक्स थी, ये जो इल्म नजूम की बातें थी, ये जो दफन था इनकी चेयर के नीचे, तो एक शैतान आदमी की सूरत में बनी इसराइल के लोगों के पास आया, कहने लगा मैं तुम्हें ऐसा खजाना ना बताऊं जिसे तुम लोग तमाम उम्र खा नहीं सकोगे, इस कुर्सी के नीचे से खोदो। लोगों ने खोदना शुरू किया, वो शैतान अलग जा खड़ा हुआ। उसकी वजह ये थी कि कुर्सी का ये खासा था कि जो शैतान उसके पास आता था फौरन जल जाता था। तो लोगों ने उस जगह को खोदा और वो तमाम किताबें निकाल ली। शैतान ने कहा देखा अब तुम्हें पता चला किस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे, जिन्नों पे, इंसानों पे, परिंद परिंद पे, इसी के जरिए तो करते थे। तो लोगों के अंदर क्या बात मशहूर कर दी कि वो भी जादू के जरिए ये सब पाया था उन्होंने, उनको भी जादू के जरिए मिला था। तो अब ये लोग बनी इसराइल के किसके पीछे पड़ गए, ये इन्हीं चीजों के पीछे जिनको शयातीन पढ़ते थे, शयातीन के ये काम थे, यानी जादू कहानत ये वो चीजें। अच्छा अब यहाँ पे ये एक जुमला मोतरजा आता है, यानी मोतरजा जुमला क्या होता है कि जैसे कलाम करते करते कोई रोक के कहे आप सीधे होके बैठे और उसके बाद फिर अपनी बात करते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पे वमा कफर सुलेमान से लेके अन्नास सिहर तक ये जुमला मोतरजा है, यानी यहाँ पे बात आई ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो बात को कट करके पहले ये कहा गया वमा कफर सुलेमान, क्योंकि इनके दिमागों में ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे, तो कहा गया हालांकि नहीं कुफर किया था सुलेमान ने। और यहाँ पे कुफर से मुराद क्या है, कुफर का वो तो कोई बुतों की पूजा तो नहीं करते थे, जादू मुराद है। वो उनके दिमागों में था ना कि ये वो जादू करते थे, तो कहा गया कि नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कुफर किया, उन्होंने कभी जादू नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरात पेश की कि वो इससे बरी है, लेकिन किसने किया, वलाकिन शयातीन कफरू, शैतानों ने कुफर किया, ये जादू टूने करते थे। युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को तालीम देते थे जादू की। अच्छा शयातीन से मुराद सिर्फ जिन्ना शयातीन नहीं है, पहला शयातीन से मुराद तो जिन शयातीन हो सकता है, लेकिन दूसरे शयातीन से मुराद जिन और इंसानों में भी तो शयातीन होते हैं। इंसान यानी ये नहीं कि वो शैतान बन जाते हैं, मतलब ये कि उनके अंदर वो सिफात आ जाती है शर की जो शैतानों के अंदर, यानी इसीलिए कभी बच्चों को आप कभी ये ना कह रहे बड़ा शैतान है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितनी बुरी बात हम बच्चे को कह रहे होते, इसे पनाह मांगनी चाहिए। तो शरारती कह दें, शैतान ना कहें, शैतान तो बहुत खबीस मखलूक है। तो जो इंसानों में से भी शैतान बन जाते हैं, यानी वो ही काम करने लगते हैं जो शैतान करते थे, तो वो उन्होंने जादू किया और वो लोगों को भी जादू सिखाते थे। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरे नबी ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं जादू किया, ये शयातीन करते थे जादू, और नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लगा दिया। तो जब उनका नाम आया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो बात काट के पहले ये बात बताई गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इस तरह बांध के हम तो वो करें, जैसे नहीं होता कि किसी ने कोई गलत काम करना हो तो फलां भी करता है ये, आपको क्या पता, वो तो कुछ बड़े बंदे का नाम लगा देते हैं ताकि इनकी भी बात ऑथेंटिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आज भी कहते हैं ना सुलेमानी टोपी, पता नहीं क्या क्या लोहे सुलेमानी और क्या क्या चीजें, ये जादू वाले लोग, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई ताल्लुक नहीं जादू से, तो ये फिर भी ये जादू वाले लोग आज तक उनका नाम यूज करते हैं। तो इसी तरह जैसे कोई और गलत काम करना हो तो किसी बड़े बंदे का जो बड़ा मशहूर हो, कि आपको पता है वो भी ऐसा करता है, अब क्या होगा, अच्छा वो भी करता है, लोग ये सुनेंगे सोचेंगे कि नहीं ये तो फिर अच्छी बात होगी जो वो इतना बड़े लोग भी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने जब अपनी बात को ऑथेंटिक करना, तो कह रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादू करते थे, पता है ये जादू से ही उन्होंने लिया था सब कुछ। तो वो पीछे पड़ गए किसके, कौन पीछे पड़ गए, बनी इसराइल, किस चीज के, मातसलु शयातीन, हो जो पढ़ते थे शयातीन, जो चीजें जादू तलिस्मात टोने टूट के ये सब चीजें, उन चीजों के पीछे पड़ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लगा के। और अल्लाह ताला ने बरात पेश कर दी सुलेमान अलैहिस्सलाम की और बता दिया कि शैतानों ने कुफर किया, यानी कुफर से मतलब यहाँ पे आप क्या लेंगे, वो वाला कुफर नहीं, शिर्क वाला वो वाला नहीं, बल्कि क्या लेंगे, जादू, और वो तालीम देते थे लोगों को जादू की। वाह माँ, अब ये देखें ये और किसके पीछे पड़ गए, ये जो माँ पीछे था ना ये ही आगे कंटिन्यूशन। अच्छा अब इसको अगर ब्रैकेट कर दे, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, इसको ब्रैकेट कर दे, तो फिर आपको बात समझ आई, वत्तबा मा तत्लु शयातीन अला मुल्के सुलेमान वमा, आगे क्या बात है, अब पिछली बात ही अब कंटिन्यू हो रही है, वमा उन्ज़िला अलल मलकैन, और जो नाजिल किया गया था। ये समझने के लिए सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आपको समझ आए कि वो जो आयत का टुकड़ा है वो क्या बता रहा है, और असल यहां से मौजू जो है कंटिन्यू वो ये हो रहा है, वो किस किस के पीछे पड़ गए, जो शैतान पड़ा करते थे उसके दौर में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, और जो नाजिल किया गया था अलल मलकैन, दो फरिश्तों पे, बिबाबिल हारूत व मारूत, बाबुल में। बाबुल क्या था? इराक का एक शहर था, उसका नाम बाबुल था, बेबलोनियन, ये आप पढ़ते भी इंग्लिश में बेबलोनिया कहते हैं। तो उसमें जो दो मलकैन, देखिए आपको मलक क्या होता है, एक वाहिद है। अच्छा, मलाइका आप पढ़ते हैं, वो क्या है, जमा। मलकैन देखिए आप, दो की जब बात आती है ना, या नून से पहले जबर आवे तो दो फरिश्तों पर, वो दो फरिश्ते कौन थे, हारूत और मारूत, ये उनका नाम था। अच्छा, इनकी क्या हिस्ट्री थी, इनकी क्या कहानी थी, आपको पता है तफसीरों में लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उन्होंने लोगों पे लुक डाउन किया, तो बहुत कैफ में उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो इसराइली रिवायात से है, कोई भी उनके अंदर से ऐसी ऑथेंटिक स्टोरी नहीं है इनके बारे में जो के हदीस से हो या कुरान पाक में भी, और इनका कुछ ऐसा जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि ये बताया गया कि ये एज अ टेस्ट अल्लाह ताला ने भेजे थे। अब वो जो कहानियां, उनको आप कोई फायदा नहीं है उनको देखने का, क्योंकि हमें ये देखना कि असल बात क्या है। अच्छा, आप किस चीज के और पीछे पड़ गए, जो उन्जिला अलल मलकीनी बिबाबिल हारूत व मारूत, उस चीज के पीछे पड़ गए जो दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया था बाबुल में, बाबुल शहर में, इसका मतलब दो फरिश्ते उतरे थे जिनका नाम हारूत और मारूत था, उनके पर नाजिल किया था। अब आपको मैं इतना इसलिए साथ साथ लेकर चल रही हूँ, इसको जरा गौर से इसलिए सुने, ये आयत ना थोड़ी सी आपको अंदर, ये लंबी आयत है ना, थोड़ी सी लॉस्ट ना आप हो जाए इसमें। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन तो बाद में बता दूंगी, लेकिन जब आप आयत को देखेंगे ना, तो आपको आयत से किसी को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आप कैसे आयत लेके और किसी को समझा सके ये आयत कैसे चल रही है। मफहूम तो इसका मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले आप समझ लें कि किस चीज के पीछे पड़ गए थे लोग। अब वो क्या चीज थी जो नाजिल हुई मलकैन पे, जो बाबुल में थे, वो मलकैन जिनके नाम हारूत और मारूत थे, उनके ऊपर क्या चीज नाजिल हुई थी। अब बाज कहते हैं कि वो जादू ही था, बाज कहते हैं नहीं जादू नहीं, बाज मुफसरीन ने कहा है कि जादू नहीं था, बल्कि देखें ऐसे था जैसे, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं समझाती हूँ, मसलन के देखें हिंदुओं का ये तरीका है, यहूद के ये तरीके हैं, ईसाइयों के ये तरीके हैं। अब किस लिए समझा रहे हैं कि भाई आप इन तरीकों को नहीं फॉलो करना, ये गलत तरीके हैं, लेकिन अगर कोई उठ के वही तरीके करने लगे, तो उनको तो समझाया इसलिए था कि भाई इससे बच के रहना, ये तरीके करते हैं वो, लेकिन कोई उन्हीं तरीकों को फॉलो करने लगे, बताने का मकसद ये नहीं था, और बताया गया कि भाई इनसे बच के रहना, और वो उसी के पीछे चल पड़े। तो यही ये लोग करने आए थे कि ये लोगों को बताते थे कि ये देखो ये जादू के टैक्टिक्स वो करते हैं, ये जादू के तरीके करते हैं, लेकिन तुमने इससे बच के रहना है, तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं ये सारी चीजें ताकि तुम बच के रहो इनसे, वो लोग ऐसे करते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ये चीजें यूज करते हैं, और वह मा यू अली मानी मिन अहदिन, और नहीं वो दोनों सिखाते थे किसी एक को भी, वो दोनों सिखाते थे हारूत और मारूत, किसी एक को भी नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन, यहां तक कि वो दोनों कहते थे कि ये आजमाइश है, फला तकफुर, तो ना तुम कुफर करो, यानी ये जो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं ये ना हो कि तुम यही करना भी शुरू कर दो, तो इन चीजों से बच के रहना, ये टेस्ट है अब तुम्हारा, तुम्हें ये सब कुछ समझ आ गई है ना, तो अब इन चीज से तुमने बच के रहना है, ठीक है, ये एक बात ये समझ आ गई ना इस तरह। अच्छा, दूसरे बाज मुफसरी ने ये भी लिखा है कि वो जादू के तरीके इनको पता थे, और वो लोगों को इसलिए आए थे कि वो आजमाइश बना के भेजे गए थे, उनको चूंकि जादू के कई तरीके आते थे, तो वो लोगों को कहते थे कि ये मत सीखो, ये सही नहीं है, इससे तुम कुफर तक चले जाओगे, लेकिन जो फिर भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाता था, वो फिर इनसे ये जादू सीख लेता था, ये भी तफसीरों में लिखा है। लेकिन आपको ये बात बस समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ भी इनके पास था वो एक टेस्ट था, बस टेस्ट था लोगों के लिए। इनके पास कुछ उलूम थे, वो लोगों को सिखा देते थे, मगर कहते थे ये टेस्ट है, इसके मुताबिक ऐसे ये नहीं करना है तुमने। लेकिन लोग फिर वो ही काम करते थे। जैसे इब्ने कसीर में एक रिवायत लिखी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी वफात के बाद एक औरत आई मदीना में, और उसको जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो बहुत रोने लगी। और तो उन्हें पूछा भाई क्यों रो रही है, तो उसने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया था, तो मुझे किसी ने, मैं चाहती थी वो वापस आ जाए, तो किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम फलां जगह पे जाओ तो वहां पे तुम्हें कुछ ऐसी चीज मिलेगी, उससे तुम्हारा हस्बैंड वापस आ सकता है। तो एक औरत मेरे पास आई दो कुत्ते लेके, एक पे वो खुद सवार थी और एक पे मुझे सवार किया, मुझे बाबुल शहर ले गई, और वहां पे ऐसे दो फरिश्ते लटके हुए थे, और उनसे मैंने कहा कि मुझे मतलब सिखा दो जो कि तुम्हारे पास है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बेहतर है कि तुम ये मत। तो उसने कहा नहीं मैं तो सीखूंगी। तो उन्होंने कहा फिर जाओ फलां तंदूर में जाके और तुम उसमें पेशाब करके आओ। तो वो गई, लेकिन उसको दिल नहीं माना और वो वापस आ गई और उनको कहा अब मैंने कर दिया वहां पे पेशाब। तो उन्होंने कहा फिर तुमने क्या देखा? तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। उन्होंने कहा तो तुम झूठ बोलती हो, जाओ फिर जाओ जाके पेशाब करके आओ। फिर गई वो वहां पे, फिर हिम्मत की लेकिन उससे नहीं हुआ, फिर वापस आ गई, उनको कहती मैंने कर लिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम बताओ तुमने क्या देखा? जब कुछ भी नहीं देखा तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम जाओ जाके उसमें पेशाब करके, और जब तक उसमें नहीं करोगी उस वक्त तक नहीं तुम्हें वो चीज मिल सकती। तो वो गई, फिर अब इस दफा थर्ड टाइम उसने जाके पेशाब किया और उसने देखा कि कोई चीज है जो निकली है और ऊपर आसमान की तरफ चली गई। तो जब आई और उन्होंने पूछा कि हाँ तुमने किया है? कहने लगी हाँ। उन्होंने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा इस तरह से एक चीज निकली और ऊपर आसमान को चली गई। उन्होंने कहा बस वो तुम्हारा ईमान था जो चला गया, अब तुम जो भी कहोगी ना वैसे होता जाएगा। तो अब क्या हुआ कि वो आई और उसने उसको टेस्ट करने के लिए एक दाना डाला, उसको कहा उग जा तो वो उग गया, उसको कहा तुम पक जा तो पक गया, उसको कहा इससे आटा बन जाए तो आटा बन गया, रोटी बन जाए तो रोटी बन गई। तो वो बहुत पछताई, उसको पता चल गया मेरा ईमान चला गया। तो अब रोती धोती वहां पहुंची मदीना पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछे। जब सहाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि अब यही है कि तुम तौबा इस्तगफार करो और अपने वालदैन की खिदमत करो और बस यही तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि सहाबा भी बहुत एहतियात करते थे कोई भी फतवा देने में। तो बाहर क्या, ये एक रिवायत इब्ने कसीर में लिखी थी, एज इट इज मैंने आपके सामने बता दी है, आप पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि यानी जो कुछ भी इनके पास था ना इल्म, हारूत और मारूत के पास, वो एक टेस्ट था। और उन्होंने कहा था कि ये वो बताते थे लोगों को सिखाने से पहले कि ये एक टेस्ट है, तो तुम ना तुम कुफर करो। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई कि उनके पास कुछ अच्छी बातें थी, कोई अजकार थे, कोई रूहानी चीजें थी, वो भी हो सकती है कि उसको उल्टा यूज ना करना, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि हम इसी तरह से लोग जादू करते हैं लेकिन तुमने करना नहीं है, ये तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं बता रहे हैं। तीसरी ये भी चीज हो सकती है कि जादू ही के कलिमात उनके पास थे जो वो लोगों को सिखा देते थे, लेकिन उनको ये पहले कहते थे तुम मत सीखो, ये मत सीखो तुम्हारा ईमान चला जाएगा, लेकिन अगर लोग जोर दे रहे हैं तो वो उनको सिखा देते थे। फयतअल्लमूना, तो वो सीखते थे। सोचिए इनके जवाल की इंतहा क्या है, खो गई थी। अब आपको पता है ये कौन सा दौर है बनी इसराइल का? अभी मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, यूशा बिन नून फौत हो चुके हैं, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया वो भी गुजर चुका है, ये बनी इसराइल का वो दौर चल रहा है उनके बाद का। ठीक है, तो हम पास्ट द हिस्ट्री जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि वो लेके उनको फिरौन से निजात अल्लाह ताला ने दी और वहां से निकले, और वो वाला दौर की बात नहीं हो रही, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद की दौर की है। तो वो उनकी हद ये थी कि बजाय अल्लाह की किताब को सीखते उसको तो पीठ पीछे डाल दिया, और कर क्या रहे थे? फैया तालमा, तो वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से, किन दोनों से? हारूत और मारूत से। मा यू फर्रिकूना बिही बैन अल मरई व ज़ौजी, जो चीज तफरीक डाल दे दरमियान मर्द के और उसकी बीवी के, वो वाला जादू सीखते खास तौर पे जो सबसे ही बुरा जादू, बाकी भी जादू बुरे ही हैं लेकिन ये सबसे ही बुरा है जिसमें मियां बीवी के दरमियान तफरीक डाली जाती है, उस वाले जादू को सीखो। अब सबसे पहली तो बात ये कि क्या जादू जायज है? क्या जादू एक वो चीज है जिसको सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है या किया जा सकता है या कराया जा सकता है? देखिए, ये हम बैठे हैं ना यहाँ पे जब हमारे सब चीजें चल रही हूँ ठीक ठाक, तो फिर शायद शायद इतना कोई हमें ना इसकी जरूरत हो। लेकिन बाज दफा जब हसद में इंसान जलने लगता है या जब इंसान की कोई बहुत शदीद ख्वाहिश होती है जो उसको होता है कि बस ये पूरी हो जाए, तब वो जादू के पीछे जाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है और कुछ ऐसा मसला नहीं है तब नहीं, तब जादू के पीछे जाने के पीछे साइकिल क्या होती है? वो ये होती है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई जादू है क्या चीज। अच्छा, इमाम जोहरी कहते हैं कि जादू एक ऐसा काम है जिसमें शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और उसकी मदद से होता है। अभी आया ना तत्लु शयातीन, वो शैतान पढ़ते थे उसको, शैतानों की ये चीज है। जादू की असलियत ये है कि किसी चीज की हकीकत को डिस्टॉर्ट करके उसके उलट जाहिर किया जाए। यानी बेसिकली जादूगर क्या करता है, वो बातिल को हक दिखा देता है लोगों को, जो जैसा होता है उसके बिल्कुल उलट उसकी चीज दिखाता है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि ये जादू झाड़ फूंक से होता है, अल्फाज से भी होता है, लिख के भी होता है, और जिन के जरिए से कोई ऐसा काम कराया जाता है जो जिसके ऊपर करना होता है, उसके जिस्म या उसके दिल दिमाग के ऊपर कुछ असरात डाले जाते हैं और उसके जरिए से बाज दफा, मैं एक्सट्रीम केस में आपको बता रही हूँ, इंसानों को कत्ल भी किया जाता है। एक वो भी जादू है जिसके जरिए इंसानों को बीमार कर दिया जाता है। यानी अभी इंसान हर जगह जा रहा है, कोई वजह ही नहीं समझ आ रही कि उसको हुआ क्या है, और अचानक बैठे बैठे एक चीज हो गई, मेडिकली कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि नहीं ये लोग पकड़ सकते, ऐसी बात नहीं, सभी जादू नहीं होते। एक तो हम हर वक्त ये भी वहम में ना पड़े रहें कि बस मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दी। 90% ऑफ द टाइम जादू नहीं होता, लेकिन बस हमें लग रहा होता है मेरे ऊपर जादू हो गया। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन होती है एक किस्म जिसमें इंसान को बीमार कर दिया जाता है। एक वो भी किस्म है जिसमें आदमी को नामर्द कर दिया जाता है, कि वो अपनी बीवी से कोई ताल्लुक रखने के काबिल नहीं रहता। और एक वो भी किस्म है जिसमें मियां बीवी में अलहदगी पैदा कर दी जाती है। एक वो भी किस्म है जिसके जरिए एक दूसरे में दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। और बनी इसराइल इस कदर उनके जवाल की इंतहा हो गई थी कि उस जमाने में क्या होता था कि जो मियां बीवी है ना, तो एक आदमी अपनी ये बहुत बड़ी बात समझता था कि मैंने उसकी बीवी को अपनी तरफ कर ली, इसको बहुत बड़ा अपना कारनामा समझता था। नहीं तो क्या होता कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शक्ल बुरी लगने शुरू हो जाती, वही जो बहुत अच्छी लग रही थी अब वो इतनी बुरी लगती है कि वो उसके पास नहीं आना चाहता, बीवी को आदमी बुरा लगने लगता है। फिर वो जादू ऐसा करते हैं कि अब कोई तीसरा बंदा उस औरत को अच्छा लगने लगता है, या इस आदमी को कोई तीसरी और दूसरी औरत अच्छी लगने लगती है अपनी बीवी के सिवा। वो उसको ये जो कहते हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह, महबूब कदमों में, ये क्या है? हम समझते नहीं है ये क्या चीज है, महबूब कदमों में ये कितना बड़ा हराम काम को लाके, चाहे वो कोई कंवारी लड़की है चाहे कोई शादीशुदा है, महबूब कदमों में आपके आ जाएगा तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? कोई कोई शादी का तो नहीं बता रहे कि वो इतना महबूब कदमों में, यानी किसी को इतना वो जादू उसके ऊपर करेंगे कि वो आपके कदमों में पड़ जाएगा जिसको आप चाहते हैं कि वो आ जाए आपकी तरफ, उसके दिल में आपका ख्याल आने लगे, उसको आपसे मोहब्बत हो जाए, उसको अपना आदमी तो बुरा लगेगा तो ये अच्छा लगेगा। ये जादू के जरिए करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। आप याद एक बात रखें, और अफसोस है कि बाज दफा इंसान ना इस कदर किसी चीज के लिए डेस्परेट हो जाता है कि वो इन जगहों का रुख करता है। लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी, और इसलिए इतनी खोल के बताऊंगी कि आपको कम से कम ये समझ आ जाए कि पूरी जिंदगी के लिए कुछ भी हो जाए इन जगहों का नहीं रुख करना। देखिए, ये जिंदगी जो है ना एक टेस्ट है, इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो हमारी मर्जी के खिलाफ हैं, इसमें गम भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, मसले भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हम क्यों चाहते हैं जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, मेरे बेटे की वहां शादी हो जहां पे मेरा मेरी मर्जी, अब चाहे उसको बीवी से तलाक कराऊं, मेरे जो घर के अंदर है फलां चीज ऐसे होनी चाहिए, फलां को औलाद नहीं हो रही, कहता है मतलब औलाद हो जाए। अब असल में जादू में कर क्या रहा है कोई, वो ये बता रहा है कि अल्लाह से तो नहीं मिला मुझे, मैंने तो बड़ी दुआएं की, नहीं मिला, उससे नहीं मिल रहा तो ना मिले, मैं जाके वो जादूगर से ले लेता हूँ, ये कहना चाहते हैं, है ना? मुझे यहाँ पे तो मेरी काम नहीं बन रहा, यानी वो क्या दिखा रहा है, ऐसे ही तो नहीं जिसको कुफर कहा गया, कुरान इसको कुफर कह रहा है, किसी और ने नहीं कहा, कुरान कह रहा है ये कुफर है, यानी इंसान काफिर हो जाता है ये करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 मुहलिकात बताए ना, तबाह करने वाले गुनाह, 7 वो काम कौन से हैं जो कबीरा गुनाह है, गुनाहों में भी कैटेगरीज है, गुनाहों में भी सब एक दर्जे के गुनाह नहीं है, 7 ऐसे गुनाह हैं जो बहुत टॉप के हैं। नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना या कराना, नंबर 3 फिर किसी को नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूदखोरी, नंबर 5 यतीम का माल खाना, नंबर 6 कुफार के मुकाबले में पीठ फेर के भागना, नंबर 7 पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। ये है 7 बिग सिंस। बिग सिंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन बिग सिंस में भी, कबीरा गुनाहों में भी, ये टॉप की कैटेगरी के हैं। तो क्या करते हैं जब लोग जादू टूनों की तरफ जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये कितने बड़े गुनाह में हो जाते हैं। और अल्लाह के ऊपर भरोसा उठ गया, यानी अल्लाह तो नहीं देगा तो हम किसी और से ले ले, तो क्या किया, कुफर ही किया ना, इसका मतलब किसी और को समझा कि वो अल्लाह नहीं भी देना चाहेगा तो कोई और दिला देगा क्या, कोई और के पास इतनी पावर है कि वो अल्लाह नहीं देना चाहता लेकिन वो दिला देगा, ये कहना चाहते हैं। तो क्या क्या करते हैं शयातीन जो होते हैं ना, ये जादूगरों के साथ असल में एक कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, ये ऐसे ही नहीं, शयातीन जादूगर, इंसान जो जादूगर होते हैं उनकी ऐसे ही हेल्प नहीं करते, फ्री में नहीं कर रहे होते हैं, पहले वो जादूगरों से कुछ कराते हैं फिर उसके बाद उनकी हेल्प। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि ये जिन्नात के जरिए होता है, जिन्नात से काम लिया जाता है। अब वो जिन्नात को कैसे अपने पास लेकर आते हैं, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं जिन्न आ जाएगा किसी के पास, कैसे लाते हैं पता है आपको, जब आप मैं बातें ये बताऊं ना तो आप इतनी कराहत आएगी, और जो लोग ऐसे कभी भी काम कर चुके हैं वो इतनी तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि देखें जो जादूगर है ना वो काम करता है जिससे फिर शैतान हैप्पी हो, शैतान से मतलब वो वाला एक शैतान की बात नहीं हो रही है, जिन शयातीन जिन्नात जो है ना वो हैप्पी हो, अब जब वो खुश होंगे तो तब इसकी हेल्प करेंगे ना, इसकी साथ दोस्ती करेंगे, फिर तो वो फिर क्या करता है इनको खुश करने के लिए, कुरान पाक को पाँव में लपेट कर कुरान समेत टॉयलेट में जाता है, कुरानी आयात को गलाजत से लिखती है, कुरानी आयात को पीरियड्स के खून से लिखते हैं, ऐसे कुरान की आयात लिखते हैं अपने पांवों के तलवों पे, ठीक है, सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं, नमाज को बगैर वुजू के पढ़ते हैं, हर वक्त जनाबत की हालत में रहते हैं, बाज वो भी हैं जो जानवर जिबा करते हैं अल्लाह के नाम के बजाय शैतान का नाम लेके, फिर उसी जिबा शुदा जानवर को किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां पे शैतान कहता है, वो जो उनका जिन होता है वो कहता है कि भाई यहाँ पे फेंको, आपने देखा नहीं, वो कहते हैं भाई लेकर आओ काला कबूतर लेकर आओ, फलाना लेकर आओ, पता नहीं क्या क्या चीजें मंगवाती हैं, वो काली ही मंगवाते हैं क्योंकि काला रंग इनको बहुत पसंद है, जिनके दिल भी काले हो गए वो काले ही करेंगे, जहन्नुम भी अंधेरी है ऐसों के लिए, और जो इनकी खबासत है वो भी अंधेर काले हैं, ये दिल के भी काले और इनको यही चीजें पसंद है, फिर सितारों को पुकारते हैं, उनको सजदा करते हैं, फिर बार दफा अपनी माँ या बेटी से बदकारी करते हैं, फिर जाके कहीं ये इनके साथ दोस्ती करते हैं, ऐसे बगैर किसी उसमें फ्री में नहीं कर रहे होते, जितना ज्यादा जादूगर कुफर में आगे बढ़ता है, इन गलीज कामों में आगे बढ़ता है, शैतान उतना ही इसका साथ देता है और उतना ही इसके इशारों पे चलता है। और क्या होता है, जब ये दोस्त बन जाते हैं तो समझ लें कि अल्लाह की नाफरमानी पे दोनों इकट्ठे हो गए। तो फिर वो जो सरदार होता है, जो जिन्नों का, जो शैतान का सरदार है उस कबीले का, वो अपने कबीले के किसी जिन को इसकी खिदमत में लगा देता है कि इस जादूगर की तुमने खिदमत करनी, अब वो इसका गुलाम है। क्योंकि अब अगर ये उसको छोड़ता है तो फिर ये जादूगर इसकी शिकायत वो बड़े वाले लीडर को इनके करता है, फिर वो इसको पिटाई लगाएगा या इसको मारेगा। इसीलिए बाज दफा ये सच्चे वाकयात हैं, बाज लोगों के अंदर जब ये जिन आ जाते हैं तो कहते हैं हमने नहीं निकलना, इसलिए क्योंकि अगर हम निकले तो वो हमें मार देंगे, निकलने से इनकार कर दे। तो ये जादू करके अब कंट्रोल में आ गया जिन, उसने इसकी खिदमत में दे दिया कि ये अब तुम्हारी खिदमत करेगा। अब ये जादूगर जो मर्जी से काम, कभी किसी के ऊपर डाल देता है, कभी कुछ करता है, कभी एक से ज्यादा भी वो जिन दे देता है। इसी वजह से आप देखेंगे ये जादूगरों के चेहरों के ऊपर नहुसत होती है, एक नहुसत। और आप देखते हैं कि ये किस तरह की उनकी लाइफ होती है। अगर वो इतना ही, ये टीवी में कभी एड्स देते हैं कि आपके काम 24 घंटे में हो जाएंगे, वो खुदा का खौफ करो हर मसला हल हो जाएगा। मुझे बताएं, खुद आप कॉमन सेंस अपनी यूज करें कि इस जमीन के ऊपर जो बेस्ट इंसान चले हैं वो कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। उनके पास तो कोई ऐसा टोटका नहीं था जिससे वो 24 आवर में अपने काम करा ले। आयशा रजी अल्लाह तआला प्यारी बीवी है, उनके ऊपर तोहमत लग गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है कि किसने क्या किया। यहूद आया सवाल पूछने के लिए, आपने फरमाया कि मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, कहना भूल गए। उनको तो नहीं जवाब आ गए, उनको तो नहीं, उनके तो नहीं मसले इस तरह से हल हो जाते थे। जो बेस्ट मैन, जो जिनसे ज्यादा अल्लाह से करीब कोई नहीं इंसान, जो अल्लाह के महबूब, उनको तो कोई तरीके नहीं आया ऐसे। आप ये सोचें इनके पास तरीके, और अगर उनके पास इतने ही तरीके तो पहले अपने तो मसले हल कर लें, फिर लोगों को एड दें, पैसे लगा लगा के इश्तेहार, पैसे लगते हैं इश्तेहारों पे, इश्तेहार देते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर आपको बुलाने की कोशिश करते हैं किसी तरह आ जाए, हर किस्म का मसला जी हम हल कर दें। तो ये तो कहां पहुंच गए, अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने आप को खुदा कह रहे हैं। जब हर मसला हम हर, यानी अल्लाह से तो दुआ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह को पुकारने की जरूरत नहीं, बस इनके पास चले, ये आपके हर मसले हल करेंगे, चाहे इमिग्रेशन का है, चाहे जॉब का है, चाहे कारोबार का है, चाहे महबूब कदमों में है, चाहे हस्बैंड नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सब चीज का मसले का हल इनके पास। तो ये इस तरह से लोगों को फांसते हैं, इस तरह से लोगों को अपने चुंगल में लेकर आते हैं। तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि ये उस जिन को अपने पास काबू करके फिर उसके बाद उससे फिर तरह तरह के काम लेते हैं। इसी वजह से जादूगर जो है ये, यानी ये जो जो इनको फांसते हैं इंसानों में से, इसकी सजा क्या बताई गई है? कत्ल बताई गई है, कत्ल है इसकी सजा, इसके सिवा कुछ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बदगुन या कहानत पर यकीन रखता है या जादू करता है या जो जादू कराता है, कहानत समझते हैं, ये जो होती है, यानी जो फॉर्चून टेलिंग, जो फ्यूचर की बातें बताना, आपके हाथ देख के, आप लकीरें देख के बता रहे हैं, अब कभी आपके सितारे देख के बता रहे हैं, अब नया एक टैरो कार्ड निकल आया उससे बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इश्तिहार दिए होते हैं कि हम आपको बताएंगे। अच्छा, वो भी मेरा ये मसला है, मेरी जॉब कब होगी, इतने अरसे से जॉब नहीं, मैं फलाना सफर कब करूं, या करूं कि नहीं करूं, आ जाऊं कि नहीं, इस्तखारा तो भूल गए, सुन्नत को तो छोड़ दिया, उनकी जगह यही चीजें रह जाएंगी ना। जो मैं जैसे अभी आपको बताया है आयत के शुरू में, कि जब जिंदगी से सही दीन, कुरान, किताब, रसूल की बात ये निकल जाएगी तो फिर यही काम होंगे ना। इस्तखारे पे तो बिलीफ नहीं है, ना इस्तखारा कौन करे, फिर अब ये काम रह गए। तो जाके उन्हीं से पूछ लेते हैं, शादी यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं मेरी बेटी, वो फिर बताएंगे हिसाब किताब लगा के। वो जो खाने बनाते हैं और उनके अंदर कई हरूफ लिखते हैं, कई नंबर लिखते हैं, ये जादू ही तो है। कई कहते हैं कि हम रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी इलाज कह के और उस अंदर क्या होता है, ये चीजें होती हैं। ये एक सच्ची बात है कि एक खातून मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस तरह हस्बैंड के, जो भी हर एक शादीशुदा औरत के तो यही मसले होते हैं, मेरे हस्बैंड इस तरह से मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए अब मैंने इंडिया में किसी से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ने के लिए दिया? उन्होंने कहा बस, उन्होंने कहा या बुद्धू हो पढ़ो। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, वो या बुद्धू तो कहा होगा, आपको कुछ गलत फहमी लगता है, हो रही है। पहले नहीं, यही कहा उन्होंने, मुझे अच्छी तरह पता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह तला का नाम नहीं है। अच्छा मेरे जहन में क्या है कि वो असमाए हुस्ना पे से उन्होंने कहा दिया होगा कि अल्लाह तला का नाम वदूद है, तो अल्लाह मोहब्बत पैदा कर। नहीं, ये नाम नहीं। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। वो कहने लगी मैं आपको लाके दिखाती हूँ। जब उसने लाके दिखाया तो या बुद्धू हो लिखा था। ये किसका नाम है, किसको पुकार रहे हो? कोई जिन का नाम है, कोई शैतान का नाम है, किसका नाम है? मैंने कहा और बैठे बिठाए देखो लोग शिरक कर रहे हैं, वो पुकारती जा रही या बुद्धू हो, या बुद्धू हो पढ़ रहे। पता नहीं उन्होंने कितनी दफा कहा था, ये तो मुझे अब याद नहीं, मगर ये नाम लेना और इस नाम से पुकारना, ये भी नहीं पता किसको पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, और अंधाधुंध लगे हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बदशगुनी ली, वो भी कितनी आम है हमारे, ये बस आ गया फलाने की वजह से ऐसा हो गया, नहीं फलानी तारीख को ना शादी करना वरना ये हो जाएगा, मुहर्रमों में ना करना वरना ऐसे, बस 13 तारीख को काम किया था तो होना ही नहीं था, या कहानत पे यकीन रखता हो कि किसी ने बता दी, नहीं जी फलाने उन्होंने कहा था मुझे, उन्होंने हिसाब लगा के बताया था, उन्होंने कहा था ये काम ना करना तो मैंने नहीं करना, फलां उन्होंने ये कह दिया था इसको पीले ही कपड़े पहनाना, फलां ने कहा था तुम कभी काले कपड़े ना पहनना वरना ये हो जाएगा, वो सारी जिंदगी बेचारी काले कपड़ा ही नहीं पहनते। जो यकीन रखता है ना इन बातों पे, या जादू करता है या जादू कराता है, या जो किसी काहिन के पास जाकर उसकी बातों की तस्दीक करता है, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार कर दिया। जिसने इनकार किया वो क्या हो जाता है, मुसलमान रहता है वो? और ये कितना कॉमन है, कहानतों पे यकीन करना, काहिनों के पास जाना, उनसे जाके पूछना, उसने कह दिया यहाँ पे ना रिश्ता करो तो नहीं करना, उसने कहा ये ठीक है ये रिश्ता आपके लिए बेटी के लिए सही है, इनका बिल्कुल सितारे मिल रहे हैं, तो वहां पे कर लिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, जब जाहिर है दीन को छोड़ेंगे, कुरान को छोड़ेंगे, फिर यही होगा, कोई तावीज़ दे दें जो मिर्चे के गले में डाल दूं वो ठीक हो जाए, कोई ऐसा कुछ ऐसा जंतर मंतर कर दें कि मेरी नौकरी हो जाए, कोई ऐसी चीज कर दें कि ये मेरा काम हो जाए, फिर यही रहेंगे ना। ये तो किताब को भी इसीलिए यूज करना है कि उल्टे लिख रहे हैं, देखिए वो हमने पढ़ा था ना कि इसी कुरान से लोग गुमराह होते हैं, उल्टा लिख रहे हैं उसको, उसी को पैरों में भर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, नाउज़ बिल्ला कितनी इसकी बेहुरमती कर रहे हैं। यानी फिर किताब भी इन इन कामों के लिए, जादू टूनों के लिए रह गई, सूरह फातिहा को उल्टा लिखना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो ये जो जब जो फरिश्ते इनको आके सिखाते थे वो बताते थे कि किस तरह आपने इन चीजों से बचना है, जैसे अब मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करते थे ऐसे करते थे, कोई एक तरीका ये कि किस तरह इसको हाजिर करते हैं, कई तरीके हैं उसके, जब जादूगर नापाक रहता है, जनाबत की हालत में रहता है, नापाक कपड़े गंदे कपड़े पहनता है, कुफरिया कलिमात अदा करता है, फिर अंधेरे कमरों के अंदर बैठ बैठ के ये वो आग जला के और डिफरेंट उससे काम करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, अब उस तरीके से ये उनको बुलाते हैं, अपने जिन्नात को हाजिर करते हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप कोई मुर्गी या कोई कबूतर या ये लेकर आओ जो इस रंग की है, और फिर जाके वहां पे फेंक के आओ, वो उन जगहों पे फेंकवाते हैं जो जिन्नों का मस्कन होती है, फिर वो जिन्नात वहां से आके लेते हैं उन चीजों को, फिर उसके बाद घर आके अब भी खुश हो गया ना जिन्न उससे, तो आप शिरकिया कलिमात की रट लगा देते हैं, कभी कभी शुरू में कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद शिरकिया कलिमात पढ़ते हैं, जो मुंह ही मुंह में पढ़ते रहते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहा है, ये क्या कह रहा है, कभी सितारों को पुकारते हैं, कभी कुरान पाक की सूरतों को ना अलहदा अलहदा रूप में उल्टा लिखते हैं, यानी आखिर से शुरू तक फिर इस तरह से लिखते हैं, उससे फिर वो जिन्नात खुश होते हैं इन ऐसे कामों से, फिर वो आके इनको पूछते हैं कि अब आप अपना मकसद बताएं, हम करते हैं वो आपका काम।